Today, it is the morning glance dated 15 June 1966. Om Shanti. Who said this?
Om Shanti.
Who said it?
Om Shanti. Om Shanti.
Student, Shibaba said it. He says it twice. Om Shanti. Om Shanti.
एक शुबाबा ने कहा, एक ब्रह्मा बाबा ने कहा.
शुबाबा said it once and ब्रह्मा बाबा said it the next time.
की बात है.
It is about 1966.
ओम शांति दो बार किसने कहा?
Who said ओम शांति twice?
ब्रह्मा बाबा ने कहा और एक शुबाबा ने कहा.
ब्रह्मा बाबा एंड शिव बाबा सेड इट.
ये बाप दादा इकट्ठे हैं ना?
दीज बाप एंड दादा आर कम्बाइंड आरंट दे.
बाप भी है और दादा भी है.
देर इज द फादर एज वेल एज द दादा द एल्डर ब्रदर.
तो दोनों को बोलना चाहिए ओम शांति.
सो बोथ ऑफ देम शुड से ओम शांति.
पहले किसने कहा?
Now, who said it first?
और पीछे किसने कहा?
And who said it afterwards?
पहले शिवबाबा ने कहा ओम शांति.
First, शिवबाबा said ओम शांति.
क्यों?
Why?
शिवबाबा ने पहले ओम शांति क्यों कहा?
शांति शुरू.
और ब्रह्मा बाबा ने ओम शांति क्यों कहा?
Why did Shiv Baba say Om Shanti first and why did Brahma Baba say Om Shanti later?
Shiv Baba to always Shanti Swarup.
Shiv Baba nahi.
Student, Shiv Baba is always the embodiment of peace. Shiv Baba, not the father Shiv.
Shiv Baba mana Shiv Jyoti Bindu plus Sakar Baba.
Shiv Baba means the point of light Shiv along with Baba in the corporeal form. Grandfather is called Baba.
व्यक्ति के आदि में जो व्यक्तित्व था बाबा.
The personality in the beginning of the yagya was Baba.
ब्रह्मा का भी बाबा.
He was even Brahma's Baba.
शिव बाबा ने कहा ओम शांति.
That Shiv Baba said ओम शांति.
पहले कहा.
He said it first.
और ब्रह्मा बाबा ने बाद में कहा क्यों कहा?
And Brahma Baba said it later. Why did he say it?
ओम शांति का अर्थ बताया मैं आत्मा शांत हूँ.
The meaning of Om Shanti mentioned was, I, the soul, am an embodiment of peace.
So, पहले शांत स्वरूप कौन बनता है?
So, who becomes the embodiment of peace first?
Shiv Baba की तो बात ही नहीं.
Students, Shiv Baba. There is no question of the father Shiv becoming that at all.
क्यों?
Why? Because he is always peaceful.
उसके कहने की बात नहीं, करने की भी बात नहीं है.
It isn't about he is saying it or he is doing it.
कहने और करने की बात है आत्माओं की.
The concept of saying or doing is for the souls.
और आत्माओं में जो सुप्रीम सोल है सुपरमेसी का पार्ट बजाने वाली है, हीरो पार्टधारी है, वो है शिव बाबा.
इन एडिशन द वन हु इज द सुप्रीम सोल अमंग द सोल्स द वन हु प्लेज द पार्ट ऑफ सुप्रीमेसी The one who is the hero actor, he is Shiv Baba. It is because Shiv enters him and he is also the corporeal father of the human world. This is why he is Shiv Baba.
आज में भी शिव बाबा और अंत में भी शिव बाबा.
He is Shiv Baba in the beginning as well as in the end.
तो पहले ओम शांति किसने कहा?
Then who said Om Shanti first?
शिव बाबा ने कहा और बाद में ओम शांति ब्रह्मा बाबा.
शिव बाबा said it first and Brahma Baba said it later.
Brahma Baba अर्थात कृष्ण की सुन.
Brahma Baba means Krishna's soul.
Shiv Baba that Shiva plus Ram ki soul.
Shiv Baba means the souls of Shiv and Ram.
So Ram ki soul pehle Shanti Swarup banti hai ya Brahma Baba ki soul pehle Shanti Swarup banti hai? Ram ki soul banti hai.
So, does the soul of Ram or the soul of Brahma Baba become the embodiment of peace first? The soul of Ram becomes that first.
इसलिए राम के लिए बोला कि वो आत्मा राम बाप कही जाती है.
This is why it was said for Ram that that soul is called the father Ram.
कृष्ण बच्चा तो बाद में है.
The topic of child Krishna comes later.
पहले तो बाप शांत स्वरूप बने.
The father should become the embodiment of peace first.
मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ ये अनुभव करे.
He should experience I the soul am the embodiment of peace.
और बाद में ब्रह्मा बाबा.
And later on Brahma Baba will experience it.
तो दोनों को बोलना चाहिए पहले शिव बाबा ने कहा ओम शांति मैं ज्ञान का सागर हूँ.
So both of them should say that first शिव बाबा said ओम शांति I am the ocean of knowledge.
और पीछे किसने कहा?
And who said it afterwards?
बाबा की आत्मा ने.
The soul of Baba said it.
बच्चों को याद दिलाते हैं ओम शांति मैं तो देही अभिमानी
हूँ. He reminds the children, Om Shanti. I am certainly soul conscious.
किसने बोला?
Who said this?
शिव बाप ने बोला मैं तो देही अभिमानी हूँ ही.
The father Shiv said, I am no doubt soul conscious.
मुझे Om Shanti कहने करने की बात नहीं है.
There is no need for me to say Om Shanti.
अभिमान में नहीं आता हूँ.
I never become body conscious.
एक ही बाप है जो सदैव देही अभिमानी रहता है.
There is only one father who always stays soul conscious.
ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए ऐसे नहीं कहेंगे. कैसे?
It won't be said for Brahma, Vishnu and Shankar. What? They are the embodiment of peace forever.
जब ब्रह्मा शांत स्वरूप सदाकाल होते हैं न विष्णु देही अभिमानी सदाकाल होते हैं और न शंकर देही अभिमानी होते हैं. इसका मतलब तीनों को देहवान आता.
Neither Brahma, Vishnu nor Shankar are always soul conscious. It means all the three become body conscious.
ब्रह्मा को भी देहवान आता है विष्णु को भी देहवान आता है और शंकर को भी देहवान आता है.
ब्रह्मा विष्णु एज वेल एज शंकर बिकम बॉडी कॉन्शियस.
अरे विष्णु तो संपन्न देवता है.
अरे विष्णु इज सर्टेनली अ कंप्लीट डीटी.
अरे विष्णु संपूर्ण देवता है या नहीं है? तो उसको कहाँ से आता है?
Is Vishnu a complete deity or not? Students, he is. Then how does he become body conscious?
Eh? इसलिए मुरली में बोला है विष्णु और शंकर को भी देवान आ सकता है.
दिस इज वाई इट इज सेड इन द मुरली इवन विष्णु एंड शंकर कैन बिकम बॉडी कॉन्शियस.
क्या कोई की परीक्षा वगैरह लेना हो
इफ दे हैव टू टेस्ट समवन
ट्रिब्यूनल बैठती है सर.
द ट्रिब्यूनल इज हेल्ड इजंट इट.
तो कोई की परीक्षा लेना हो तो देवान आ सकता है. है तो देवता विष्णु संपूर्ण देवता है शंकर महादेव है.
So, if they have to test someone, they can become body conscious. They are certainly deities. Vishnu is a complete deity. Shankar is Mahadev.
फिर भी उनको जो कार्य मिला हुआ है उसके अनुसार उनको भी देवान आ सकते
हैं. Still, according to their allotted duty, they too can become body conscious.
तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का सूक्ष्म रूप है.
You know. That Brahma, Vishnu and Shankar have a subtle form. They have a subtle form, meaning those souls are the ones who stabilize in the subtle form.
Devan mein tikna, unka koi dharm nahi hai.
Their characteristic isn't to stabilize in body consciousness. They have a subtle form.
So, Om Shanti कहने वाला एक तो शिव है जिसका कोई शरीर नहीं है.
So, Shiv, the one who doesn't have a body, is the one who says Om Shanti first.
ये बात तुमको अच्छी से समझाती.
The father teaches this to you nicely.
और कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ.
एंड ही सेज आई कम ओनली वंस.
कहाँ साकार सृष्टि पर एक ही बार आता हूँ.
आई कम ओनली वंस इन द कॉर्पोरियल वर्ल्ड.
और बीच बीच में वापस नहीं जाते.
डजंट ही गो बैक इन बिटवीन.
आता हूँ तो काम करके वापस जाऊंगा या बीच में काम अधूरा छोड़ करके चला जाऊंगा.
When I come, will I return after completing my task or will I return leaving the task incomplete in between?
दुनिया में भी कहते हैं श्रेष्ठ आदमी जो होता है वो या तो कोई कार्य शुरू नहीं करता है और कोई कार्य को शुरू करता है तो उसको समाप्त करके छोड़ता है.
It is said in the world as well, an elevated person either doesn't start a task, or if he starts it, he leaves after completing it.
जब तक संपन्नता को काम नहीं पहुंचता है,
until his task completes,
तब तक बीच में छोड़ने वाला आदमी अच्छा नहीं माना जाता. या तो काम को शुरू न करे और शुरू करे तो पूरा.
A man who leaves his task in between isn't considered to be good. Either he shouldn't start a task, or if he starts it, he should complete it. The father explains to you nicely. I come only once, and don't return in between either. I return after completing my task. I am always soul conscious.
और मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ.
I don't have rebirth.
जन्म मरण से रहित ये कहना राम है.
This is wrong to say that I am beyond birth and death.
मेरा मरण तो होता ही नहीं.
I don't face death at all.
मैं मरता तो हूँ नहीं.
आई डोंट डाई एट ऑल.
मरना और जीना कैसे होता है.
थ्रू व्हाट डज समवन लिव एंड डाई.
या तो शरीर से होता है मरना जीना वो तो हद की दुनिया की बात हुई और या तो निश्चय और अनिश्चय से जीना मरना होता है.
he lives and dies either through the body, it is about the limited world, or he lives and dies by means of having a faithful and a doubting intellect.
कोई को निश्चय पैदा हुआ कि मैं आत्मा हूँ और मैं अमुक रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा हूँ.
If someone has faith, I am a soul, and I am the soul who plays part in so and so group.
सूर्यवंशी हूँ, चंद्रवंशी हूँ, इस्लामवंशी हूँ. या कोई भी वंशी कोई भी ग्रुप में पार्ट बजाने वाली आत्मा हो, इतना भी अगर पता लग जाए तो आत्मा को अपने पार्ट का कुछ पता लगा. मैंने आत्मा निश्चय बुद्धि हुई.
आई एम अ सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी और द वन बिलोंगिंग टू एनी डायनेस्टी, द वन प्लेइंग द पार्ट इन एनी ग्रुप. If he comes to know at least this much, it means the soul came to know something about his part. That is, he became the one with a faithful intellect. When he has a faithful intellect, it means he is born. And if he has a doubting intellect, it will be said that he has died.
निश्चय बुद्धि विजय थी और अनिश्चय बुद्धि विनाश.
दिस इज व्हाई इट हैज बीन सेड द वन विद अ फेथफुल इंटेलेक्ट बिकम्स विक्टोरियस एंड द वन विद अ डाउटिंग इंटेलेक्ट इज डिस्ट्रॉयड.
काये के ऊपर है निश्चय बुद्धि और काये के ऊपर निश्चय बुद्धि.
रिगार्डिंग व्हाट डू वी हैव अ फेथफुल इंटेलेक्ट एंड अ डाउटिंग इंटेलेक्ट. The first thing is to have a faithful intellect towards the father.
दुनिया में भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको निश्चय बुद्धि होना पड़ता है ना, लोग उस बात के ऊपर.
In the world too, when a child is born, he has to have a faithful intellect for his lawful father, doesn't he?
या कि उसने देखा है कि मेरा बाप बनने वाला कौन है.
और हैज ही सीन हु इज गोइंग टू बिकम हिज फादर.
वो देखता है क्या.
डज एनीवन सी हिज फादर बिफोर ही वाज बोर्न.
इन आंखों से तो देखता ही नहीं.
ही डजंट सी थ्रू दीज आईज एट ऑल.
पैदा ही नहीं हुआ था तो देखने का तो सवाल ही नहीं.
He wasn't even born, then there is no question of seeing him at all.
तो ये कि के आदि में भी नई सृष्टि की परिक्रिया करने के लिए ज्ञान का बीज आरोपण किसने किया, कब किया, ये कोई नहीं जानता.
So, in the beginning of the yajna too, no one knows who and when the seed of knowledge was sown for the procedure of creating the new world.
No one knows it.
Student, the father knows it. It isn't about the father. Student, the mother knows it. Does the mother know it? Sometimes it also happens that the mother becomes unconscious.
हो जाती है कि नहीं. हो जाती है.
Does she become unconscious or not? She does.
तो वो भी नहीं जानती.
Then she too doesn't know it.
माना जो बीज प्रदत्त पिता है वो ज्ञान का बीज होने वाला पिता प्रेम को जानता है, उसके अलावा और कोई नहीं जानता इस मनुष्य सृष्टि का पिता कौन है.
It means that the father who sows the seed, the father who sows the seed of knowledge himself knows him. No one else except him knows who the father of this human world is.
यदि के आज में भी किसी बच्चे ने नहीं जाना.
No child knew him in the beginning of the yajna either.
Agar jana hota, to dusron ko batata.
Had anyone known, he would have told others as well.
Duniya mein bhi aise hi hota hai. Patni ki pehlaish ki prakriya. Baap jaane, mata jaane. Aur koi nahi pata.
The same happens in the world too. Either the father or the mother knows about the procedure of the child's creation. Nobody else knows about it.
Agar koi ko pata bhi chale na, to badda mana jata. Achha nahi mana jata.
Even if someone else comes to know about it, it is considered vulgar. It isn't considered good.
तो ये शक्ति की प्रक्रिया का कार्य भी ऐसे ही हुआ। यज्ञ के आदि में बाप ने बीजारोपण किया।
So, the task of the creation of the world also took place in the same way. The father sowed the seed in the beginning of the yajna.
इसलिए बोला राम बाप को कहा जाता
है। This is why it was said the father is called Ram.
बाप गुप्त रहता है।
The father is secret.
और बच्चा जब जन्म लेता है तो प्रकट हो जाता
है। And when the child is born, he is revealed.
जब तक माँ के गर्भ में है तब तक
As long as he is in the mother's womb, he is hidden.
तो प्रवेश जब आत्मा होती है गर्भ में तो जन्मदिन मनाया जाता है या जब बच्चा बाहर आता है तो जन्मदिन मनाया जाता है।
So, is the day of birth celebrated when the soul enters the womb or is it celebrated when the child comes out of the womb?
बच्चा जब बाहर आता है तो जन्मदिन मनाया जाता है।
When the child comes out, the day of his birth is celebrated.
लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में क्या बात फैल गई?
However, what rumor was spread in the world of Brahmins?
कि ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए और उनमें शिव बाबा ने प्रवेश कर लिया।
ब्रह्मा बाबा हैड विजन्स एंड शिव बाबा एंटर्ड हिम।
वैसे भी तो सृष्टि में साक्षात्कार तो तुलसीदास को हुए, सूरदास को हुए, मीरा को हुए, बहुत से भक्तों को साक्षात्कार हुए।
Anyhow, in the world, Tulsidas, Surdas, Meera and many devotees certainly had visions.
So, किसी ने ये तो नहीं कहा कि मेरे अंदर शिव बाबा शिव बाप ने प्रवेश कर लिया या शिव भगवान ने प्रवेश कर लिया।
But none of them said that the father Shiv or God Shiv entered them.
प्रवेश करना अलग बात है और साक्षात्कार होना अलग बात।
To enter someone and to have visions are two different concepts.
ब्रह्मा के बुद्ध रूपी पेट में शिव बाप ने प्रवेश किया।
The father Shiv entered Brahma's stomach like intellect.
कब किया? ये कोई बता ही नहीं
सकता। No one can tell when he entered.
जैसे गर्भ में आत्मा कब आती है?
Just as no one comes to know when a soul enters the womb.
बाद में माता को पता चलता है। जब कुछ चुलबुल होती है तो पता चलता है।
Later on, the mother comes to know about it. She comes to know when there are some moments.
ऐसे ही ब्रह्मा बाबा को थोड़ा थोड़ा निश्चय हुआ कि मेरे अंदर है।
Similarly, Brahma Baba had a little faith. The father Shiv enters me.
और वो आकर के जो ज्ञान सुनाता है वो मेरी बुद्धि में नहीं था।
And the knowledge that he comes and narrates wasn't in my intellect.
जब ज्ञान सुनाते हैं तो पता चलता है ये शिव बाबा का काम है। ऐसी बातें तो हमने भक्ति मार्ग में और कभी सुनी ही नहीं।
when he narrates the knowledge he comes to know, this is Shiv Baba's task, as I have never heard such concepts before in the path of bhakti at all. So, Shiv, the Supreme Soul, stays hidden. And in the womb of that mother, the children are born number wise through the stomach like intellect.
लेकिन बच्चे अपने स्वरूप को नहीं जानते.
Nevertheless, the children don't know their form.
क्यों?
Why?
क्योंकि शास्त्रों में जितने नाम पढ़े हैं, काम के आधार पर नाम पढ़े.
It is because all the names in the scriptures are based on the tasks performed.
जैसा जैसा जिसने काम किया, वैसा वैसा उसका नाम पढ़.
As was the task someone performed, he was named accordingly.
Asuri kaam kiya to asuri naam pada. Devi kaam kiya to devi naam pada.
If he performed a demonic act, he was given a demonic name. If he performed a divine act, he was given a divine name.
Koi devata ka aur koi rakshas ka paath bana.
Some play the part of a deity and some play the part of a demon. The souls certainly aren't born. This is in fact the identification of the souls. On what basis? On the basis of the act they performed.
अभी वो काम संगम युग में नूद हो रहे.
Now, those acts are being recorded in the confluence age.
चाहे वाचा का हो, चाहे कर्मणा का हो, चाहे मनसा या वाइब्रेशन का हो, हर आत्मा अपना अपना पार्ट नूद कर रही है.
Whether it is the part of speech, actions, the mind or vibrations, every soul is recording its part.
जैसे गर्भ में बच्चे का फीचर तैयार होता है, ऐसे ही इस पुरुषोत्तम संगम युग में हर मनुष्य आत्मा जो ब्राह्मण बनती है, ब्रह्मा का बच्चा बनती है, वो अपनी सीरत से, अपने काम से, अपने सूरत को प्रकट कर रही है.
Just as the features of a child become ready in the womb, in the same way, every human soul who becomes a Brahman, the child of Brahma, is revealing his face through his characteristics and his actions in this Purushottam Sangam Yoga.
अभी बहुत थोड़ा टाइम.
Now, very little time is left.
Atma rupi bachche kaun kaun kya kya paath bajane wale hain? Wo pratyaksh hone ka time aa gaya.
It is the time for the revelation of all the parts the souls in the form of children are going to play.
Jaise teen murtiyon ke liye एडवांस ज्ञान की जब शुरुआत हुई तो बोलना शुरू कर दिया. तीन इनाम मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड.
जस्ट लाइक व्हेन द एडवांस नॉलेज स्टार्टेड, बाबा स्टार्टेड सेइंग फॉर द थ्री पर्सनालिटीज दैट यू विल रिसीव थ्री प्राइजेस, द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड.
इस धूल प्रदर्शनी का सजावट का इनाम दीदी दादियां देंगी.
दीदीज एंड दादीज विल गिव द प्राइज फॉर द डेकोरेशन ऑफ द फिजिकल एग्जीबिशन.
और चैतन्य प्रदर्शनी की, चैतन्य चेहरे की प्रदर्शनी की सजावट का इनाम बाप दादा देंगे.
And Babdada will give the prize for the decoration of the living exhibition, the exhibition of living faces. When the time comes, they will automatically be revealed.
Form first number, form second number, form third number.
Who the first number, the second number and the third number is. So, the part of all the three personalities was revealed in the advanced knowledge. On what basis was it revealed? Was it revealed on the basis of visions? Not on the basis of visions.
अपने अपने कर्म के आधार पर अपनी अपनी वाचा के आधार पर और अपने अपने वाइब्रेशन मंशा पावर के आधार पर व्यक्ति के होश के आधार पर वो तीनों पार्ट ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो गए.
Those three parts were revealed in the world of Brahmins on the basis of their actions, words, vibrations, that is the power of their mind and the force of their vision. In front of which Brahmins were they revealed? Were they revealed in front of the small children who are studying the basic knowledge? No. They were revealed in front of those who are studying the higher studies, whose class has been transferred.
The basic knowledge and junior knowledge get transferred. So, the class also changes, and the teachers also change.
When we are transferred from the basic knowledge or the junior high school, the place as well as the teachers change. So, the teachers as well as the place of those who came in the advanced knowledge changed. Well, do we have one or many teachers? Has our teacher's place changed? Hasn't it changed? It has certainly been said in the Avyaktvani.
Avyaktvani mein bola hai Brahma baap ko ye seva sthan change kiya hai. कैसे तुम बच्चे सेवा स्थान चेंज करते हो ना, वैसे ब्रह्मा बाप ने भी सेवा स्थान चेंज किया.
It has been said in the Avyaktvani, the father Brahma has changed the field of service. Just like you children change your field of service, don't you? In the same way, the father Brahma has also changed his field of service.
हजार बुधा का पाठ ब्रह्मा का आज से अंत तक बुधा
हुआ. The part of Brahma with thousand arms is fixed from the beginning till the end.
जब तक स्थापना का कार्य पूरा नहीं हुआ है तब तक ब्रह्मा का पाठ समाप्त नहीं हो सकता.
Until the task of establishment has completed, Brahma's part can't end.
और ब्रह्मा कहा जाता है तब जब उसमें शिव प्रवेश.
And he is called Brahma only when Shiva enters him.
फिर ये भी बोल दिया मान लो ये ब्रह्मा चला जाता है तो जिस तन में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े.
It was also said, suppose this Brahma goes away, then whichever body he enters has to be named Brahma.
तो ब्रह्मा कितने हो गए?
So how many Brahmas are there?
अनेक ब्रह्मा हुए ना.
There are many Brahmas, aren't there?
इसलिए भक्ति मार्ग में पांच ब्रह्मा मानेंगे.
This is why it is believed that there are five Brahmas in the path of bhakti.
Brahma ko panchanan chaturanan kaha jata hai.
Brahma is called panchanan chaturanan.
Anana mana mukh.
Anana means mouth.
Mane itne mukhon se bolta hai.
It means he speaks with these many mouths.
Aur Brahma kaha itna bajata hai jab Shiv usme pravesh hota hai.
In addition, he is called Brahma only when Shiv enters in.
इसलिए ब्रह्मा नाम तो बहुतों के.
This is why many have the name Brahma.
लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ एक का ही
है. Nevertheless, only one has the name Prajapita Brahma.
यदि के आज ने तो पता नहीं चला कि प्रजापिता ब्रह्मा कौन है.
In the beginning of the yajna, we certainly didn't come to know who Prajapita Brahma is, who is known as Aham Bij Prajapita, meaning I am the father who sows the seed.
लेकिन जब एडवांस नॉलेज मिलती है, गहराई का ज्ञान मिलता है, तो पहले पहले वो सुप्री बेसी का पार्ट, जो आत्माओं के बीच में सुपर पार्ट धारी है.
However, when we receive the advanced knowledge, the deep knowledge, the one who plays the part of supremacy, the actor who plays the super part among the souls is revealed first of all. He is the first personality.
Abbal number. ऊंचे से ऊंचा पार्ट धारी.
द नंबर वन हाईएस्ट एक्टर.
ऊंचे से ऊंचे को याद करेंगे तो क्या बनेंगे.
इफ वी रिमेम्बर द हाईएस्ट ऑफ द हाई व्हाट विल वी बिकम.
ऊंचे से क्या बनेंगे.
वी विल बिकम द हाईएस्ट.
इसलिए तीन पुरिया जो दिखाई जाती है सूक्ष्म बदन में उनमें सबसे ऊंची तेज महादेव की मूर्ति की दिखाई जाती.
दिस इज वाई अमंग द थ्री अबोर्ड्स दैट आर शोन इन द सटल वर्ल्ड महादेव पर्सनैलिटी इज शोन इन द हाईएस्ट स्टेज.
और दूसरे नंबर की स्टेज विष्णु की मूर्ति की दिखाई जाती है.
एंड विष्णुज पर्सनैलिटी इज शोन इन द सेकेंड नंबर स्टेज.
और सबसे निची स्टेज ब्रह्मा की दिखाई
जाती. एंड ब्रह्मा इज शोन इन द लोएस्ट स्टेज.
तो ये तीन मूर्तियां एडवांस पार्टी में सबसे पहले प्रत्यक्ष हो जाती.
सो दीज थ्री पर्सनैलिटीज आर रिवील्ड एट फर्स्ट इन द एडवांस पार्टी.
अगर तीन मूर्ति शिव का ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ है बुद्धि में तो निश्चय बुद्धि बच्चा है.
If the knowledge of Trimurti Shiv has been revealed in someone's intellect, he is the child with a faithful intellect.
अगर तीन मूर्तियों का ज्ञान बुद्धि में प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तो निश्चय बुद्धि बच्चा नहीं है.
If the knowledge of the three personalities hasn't been revealed in his intellect, he isn't the child with a faithful intellect.
क्योंकि एक मूर्ति शिव नहीं कहा जाता, दो मूर्ति शिव नहीं कहा जाता.
It is because it isn't said one Murti Shiv, two Murti Shiv. What is said? Trimurti Shiv. It is because all the three personalities come together in this world. Shiv doesn't come alone.
Shiv ki soul is srishti par akeli nahi aati.
Shiva's soul doesn't come alone in this world.
वो तीन मूर्तियों के साथ आती है.
It comes with the three personalities.
आदि भी साथ में है और संसार में पूरा पूरा प्रत्यक्ष भी होती है साथ.
They come as well as are completely revealed in this world together.
माना?
What does it mean?
अभी भी बच्चों की बुद्धि में निश्चय और संशय चल रहा है.
It means the children are still having faith and doubt in their intellect.
Percentage है.
The percentage is different.
कोई 100% निश्चय बुद्धि भी होगा. ये तीन मूर्तियाँ कौन है?
Someone would be the one with 100% faithful intellect regarding the topic, who the three personalities are.
इल्ले डुल्ले की बात नहीं.
There is no question of shaking.
फिर कोई नंबर वाइज होगी.
Then, some will also be number wise.
एक जैसे सुनिश्चय बुद्धि सब होते नहीं.
Not everyone has the same kind of faithful intellect.
सुनिश्चय बुद्धि भी जैसे माने जितना ही निश्चय बुद्धि उतना ही विजय को प्राप्त होता
है. सो द वन विद अ फेथफुल इंटेलेक्ट विन्स. इट मीन्स द मोर वी हैव अ फेथफुल इंटेलेक्ट द मोर वी विन. व्हाई?
निश्चय बुद्धि का आधार है ज्ञान.
द बेसिस ऑफ हैविंग अ फेथफुल इंटेलेक्ट इज नॉलेज.
और ज्ञान का आधार है मुरली. हम ब्राह्मणों के जीवन का आधार क्या है?
And the basis of knowledge is the Murli. What is the basis of the life of a Brahmin? The Murli.
हमारे जीवन का आधार कोई देहदारी नहीं है.
No bodily being is the basis of our life.
ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा को फॉलो करने वाला.
Brahmin means the one who follows Brahma.
ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा को आचरण करता है.
ही हु फॉलोज ब्रह्मा इज अ ब्राह्मण.
दो तरह से फॉलो किया जाता
है. समवन इज फॉलोड इन टू वेज.
एक कर्म को फॉलो करना.
वन इज टू फॉलो द एक्शंस.
जैसे ब्रह्मा ने कर्म किए वैसे कर्म करने वाला ब्राह्मण ब्रह्माचारी ब्राह्मण.
The Brahmin who performs actions the way Brahma did is known as Brahmachari Brahmin.
और दूसरा है डायरेक्शन को फॉलो करने वाला.
And the other thing is to follow his directions.
इसलिए मुरली में बोला है ब्रह्मा जैसा आचरण करो.
This is why it is said in the Murli, follow Brahma in actions.
परंतु बात देखिए.
But listen to my words.
माने ब्रह्मा बाबा ने जैसे कर्म किए हैं वैसे कर्म हम बच्चों को करने.
What does it mean? We children have to perform actions the way Brahma Baba did.
लेकिन जहाँ तक बात मानने का सवाल आता है तो बात मुंबर में परमात्मा शिव प्रवेश करके जो बोलते हैं उस बात को.
बट वेन अ क्वेश्चन ऑफ फॉलोइंग डायरेक्शंस अराइजेस वी शुड फॉलो द डायरेक्शंस दैट द सुप्रीम सोल शिव गिव्स आफ्टर एंटरिंग द परमानेंट चैरियट.
माना ब्रह्मा भी अगर कहे तो ब्रह्मा की भी बात नहीं
मानती. इट मीन्स इवन इफ ब्रह्मा सेज समथिंग वी डोंट हैव टू लिसन टू हिज वर्ड्स.
कोई कहे हम तो शिव बाबा की भी बात मानेंगे और ब्रह्मा बाबा की भी बात मानेंगे.
इफ समवन सेज वी विल सर्टेनली फॉलो शिव बाबा एज वेल एज ब्रह्मा बाबा डायरेक्शंस.
तो दो की मत पर चलना हुआ या एक ही मत पर चलना हुआ?
देन Is it following the directions of two or one? It is duality. Duality means the beginning of the Copper Age.
Ravana Rashi ki shuruaat ho jati hai.
The kingdom of Ravan begins.
Isliye ek naam hi banna hai. और एक को याद करने वाला.
This is why we have to become Ek Nami and the one who remembers the one.
बात मेरी मानो और ब्रह्मा ने जैसे कर्म किए वैसे कर्म बने.
Listen to my words but perform actions the way Brahma did.
इसलिए बोला मेरी महिमा न्यारी है.
This is why it was said my glory is unique.
मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ.
I don't have rebirths.
मानस जिस तन में प्रवेश करके बाप का पाठ बजाता है वो अनिश्चय और निश्चय के चक्र में नहीं आता.
It means the body which the Supreme Soul Father enters and plays the part of the father doesn't come in the cycle of doubt and faith.
दूसरी जितनी भी मनुष्य आत्मा है जब तक ज्ञान सूर्य प्रकट नहीं होता तब तक कुछ न कुछ निश्चय बुद्धि और अनिश्चय बुद्धि के चक्र में आती
है. All the other human souls continue to come in the cycle of having a faithful and a doubting intellect to some or other extent until the sun of knowledge is revealed.
मेरी महिमा न्यारी है मुझे कहते ही है निराकार परमपिता परमात्मा.
My glory is unique. I am certainly called the incorporeal Supreme Father, Supreme Soul.
क्या कहते हैं?
What do they say?
कैसा परमपिता?
How is the Supreme Father?
निराकार परमपिता.
The incorporeal Supreme Father.
मेरी यादगार है मंदिर में. सोमनाथ मंदिर में मेरी क्या यादगार थी?
There is my yadgar in the temples. What was my yadgar in the Somnath temple? Someone said Shivling. No.
Shivling mein jada hua heera.
The diamond embedded in the Shivling.
Woh nirakar ki yadgar.
It was the yadgar of the incorporeal one.
Jo heera binduvat rakha hua tha, woh hai meri yadgar, mane nirakar Shiv ki yadgar.
The diamond which was placed in the form of a point was my yadgar, that is the yadgar of the incorporeal Shiv.
Aur heera jis gol patthar mein rakha hua tha wo gol patthar hai lal patthar hai puja kar diya mukarrar ki yadgar.
And the round stone in which the diamond was embedded, that round red stone was the yadgar of Prajapita, the permanent chariot.
बोला मुझे कहते हैं निराकार परम पिता.
सो इट वॉज सेड दे कॉल मी द इनकॉर्पोरियल सुप्रीम फादर.
कैसा पिता?
व्हाट काइंड ऑफ फादर?
परम पिता. माने पिताओं के बीच में जो परम पार्टधारी.
द सुप्रीम फादर इट मीन्स द सुप्रीम एक्टर अमंग द फादर्स.
उस पिता से बड़ा पार्ट और पिता की.
नो वन एल्स हैज अ ग्रेटर पार्ट देन द फादर इन द फॉर्म ऑफ द फादर.
क्यों?
व्हाई?
प्रजापिता का नहीं है.
डजंट प्रजापिता हैव इट?
प्रजापिता का पार्ट तो है.
प्रजापिता डेफिनेटली हैज अ पार्ट.
लेकिन प्रजापिता भी अपना बाप किसको मानता है?
However, whom does even Prajapita consider as his father? He considers the father Shiv as his father. Why does he consider him that? In fact, he himself is the father of the human world. Then why does he consider the father Shiv as his father?
सबसे बड़ा है.
स्टूडेंट रिप्लाइज ही इज द हाईएस्ट.
क्यों?
व्हाई?
क्योंकि आत्माओं को चाहे वो हीरो पाठकारी आत्मा क्यों ना हो उसको भी ज्ञान की पहचान बाप की पहचान देने वाला सुप्रीम रूल है.
स्टूडेंट इन नरेटिंग द नॉलेज, यस इट इज बिकॉज इट इज द सुप्रीम सोल हु गिव्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉलेज, द इंट्रोडक्शन ऑफ द फादर टू द सोल्स एंड इवन टू द सोल ऑफ द हीरो एक्टर.
राम की आत्मा हो या कृष्ण की आत्मा हो, वो अपने पार्ट को नहीं जानती.
वेदर इट इज द सोल ऑफ राम और द सोल ऑफ कृष्ण, दे डोंट नो देयर पार्ट.
इसलिए गीता में भी कहा गया है, अर्जुन तू अपने जन्मों को नहीं जानता.
This is why it is also said in the Gita, O Arjun, you don't know about your births.
मैं तेरे को बताता हूँ.
I tell you about them.
एक एक के जन्मों को तो पाप नहीं बता के बताता है, लेकिन फार्मूले बता देता है ज्ञान की.
The father doesn't come and tell each and everyone's birth, but he tells the formula of knowledge.
कि ये फार्मूले हैं जिनके आधार पर तुम बच्चे अपने पार्ट को.
All these are the formulas on the basis of which you children can recognize your part.
तुमका नाम है परम पिता परमात्मा, परम पिता पहले और परमात्मा बाद. क्यों?
So his name is the supreme father, supreme soul. First the supreme father and then the supreme soul. Why?
परमात्मा परम पिता कहने तो
वॉट इफ वी से द सुप्रीम सोल सुप्रीम फादर.
परम पिता
परम पिता पिताओं के बीच में जो बड़ा पार्टदारी पिता है वो सबका पिता, सबका पिता का भी पिता.
स्टूडेंट रिप्लाइज, यस द सुप्रीम फादर हु प्लेज द हाइएस्ट पार्ट अमंग द फादर्स इज द फादर ऑफ एवरी वन. ही इज द फादर ऑफ प्रजापिता एज वेल.
और परमात्मा माने आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी है वो प्रजापिता है, हीरो पार्टधारी.
एंड द सुप्रीम सोल इज द सुप्रीम एक्टर अमंग द सोल्स, ही इज प्रजापिता द हीरो एक्टर.
इसलिए परमात्मा बाद में और परम पिता पहले.
दिस इज वाई द सुप्रीम सोल इज सेड आफ्टरवर्ड्स and the supreme father is said first.
Yes, Shiva Shankar.
Just like Shiv Shankar.
Pehle kon?
Who is first?
Shiv.
Shiv.
Aur baad mein kon? Shankar.
And who is afterwards? Shankar.
Kyun?
Why?
Shankar Shiv kyun nahi keh dete?
Why don't they say Shankar Shiv?
क्योंकि जो बाप है बड़ा उसको पहले रखना पड़े.
इट इज बिकॉज द फादर हु इज एल्डर शुड बी प्लेस्ड फर्स्ट.
और जो बच्चा है वो बाद में रखना पड़े.
एंड द चाइल्ड शुड बी प्लेस्ड आफ्टरवर्ड्स.
और दोनों को मिलाते ही है ज्ञान का.
मोर ओवर बोथ ऑफ देम आर ऑल्सो कम्बाइंड.
शिव शंकर को साथ साथ मिलाएंगे, शिव ब्रह्मा को नहीं मिलाएंगे.
They combine Shiv and Shankar. They won't combine Shiv and Brahma.
शिव विष्णु नहीं कहेंगे.
They won't say Shiv Vishnu.
क्या कहेंगे? क्यों?
What will they say? Students, Shiv Shankar. Why?
तीन मूर्तियों में विष्णु की मूर्ति नहीं है क्या? ब्रह्मा की मूर्ति नहीं है क्या?
Doesn't the Trimurti include Vishnu's personality? Doesn't it include Brahma's personality?
Trimurti Shiva कहा जाता है तो ब्रह्मा और विष्णु की मूर्ति को निकाल देते हैं क्या?
When they say Trimurti Shiv, do they remove the personalities of Brahma and Vishnu?
इस शिव का नाम विष्णु के साथ या ब्रह्मा के साथ क्यों नहीं जोड़ते?
Then why don't they combine the name of Shiv with Vishnu or Brahma?
बाप समान शरीर में रहने वाला
क्योंकि बाप समान 100% के तेज को धारण करने वाला वो एक ही निकलता है.
Student, it is only Shankar who attains the stage equal to the father. Yes, it is because only that one soul emerges as the one who attains the stage equal to the father 100%.
तो बाप कहते हैं मैं आता हूँ तो मैं तुम बच्चों को जो शिक्षा देता हूँ वो बाप समान बनने की शिक्षा देता
हूँ. It is because the father says, when I come, the knowledge which I give you children is to become equal to the father.
जैसी बाप की स्टेट वैसी ही बच्चों की स्टेट होनी चाहिए.
As is the father's stage, so should be the children's stage.
तो बाप की स्टेज है निराकारी निर्विकारी निरहंकारी वो तो सदाशिव.
So the father's stage is incorporeal, viceless and egoless. He is certainly forever Shiv.
तो सदाकाल की उसकी स्टेज है.
This is why he always has that stage.
लेकिन संगम युग में जिसमें बाप पढ़ाने के लिए आता है तो जब पढ़ाई पूरी होगी तो कुछ तो बच्चा ऐसा होगा जो उस स्टेज को पहले प्राप्त करे.
But the one in whom the father comes to teach in the confluence stage, when that study gets completed, there must be a child who attains that stage first.
तो जो बच्चा उस स्टेज को प्राप्त करता है उसका टाइटल पड़ जाता है देवताओं में बड़ा देवता देव देव महादेव.
So the child who attains that stage is given the title the highest deity among the deities, that is देव देव महादेव.
और उसी बच्चे का नाम शिव के साथ एड किया.
एंड द नेम ऑफ दैट वेरी चाइल्ड इज कम्बाइंड विद दैट ऑफ शिव.
नहीं तो प्रदर्शनी के बेसिक नॉलेज में लोग पूछते
हैं. अदरवाइज पीपल आस्क इन एग्जीबिशन इन अ बेसिक नॉलेज.
तुम कहते हो शिव शंकर अलग अलग है और भक्ति मार्ग में तो शिवशंकर एक ही माने जाते हैं.
यू से दैट शिव एंड शंकर आर डिफरेंट वेयर एज शिव एंड शंकर आर बिलीव टू बी द सेम इन द पार्ट ऑफ भक्ति.
तो कौन झूठ है कौन सत्य है?
देन हु इज फॉल्स एंड हु इज ट्रू?
भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिलाकर एक क्यों कर दिया है?
Why did they combine and make Shiv and Shankar one in the path of bhakti?
तो आने वाले जिज्ञासु कारण बताओ वो जारी कर लेते.
So the seekers who come in the exhibition issue a show cause notice.
तो जो एडवांस नॉलेज लेने वाले नहीं है वो तो हक्के बक्के रह जाते हैं. या तो बोलते हैं कौन चंद्र पार्टी का
है. एंड दोज हु डोंट टेक द एडवांस नॉलेज बिकम टंग टाइड और एल्स दे से दिस वन बिलोंग्स टू द शंकर पार्टी.
तो समाधान तो करना चाहिए.
सो दे शुड एटलीस्ट गिव देम अ सोल्यूशन.
जो भी प्रश्न पैदा होता है प्रश्न का समाधान जरूर होता है.
व्हिचएवर क्वेश्चन अराइजेस देयर इज सर्टेनली अ रिप्लाई टू इट.
तो ये समाधान है.
So, this is the solution.
कि 33 करोड़ देवताओं में से कोई भी देवता पहले पहले बाप समान स्टेज को नहीं प्राप्त करता सिवाय शंकर.
Among the 330 million deities, no deity except Shankar attains the stage equal to the father first of all.
इसलिए जो होते सोवर.
This is why the one who acts first is Arjun.
पहला नंबर.
He is the number one.
तो जो पहला नंबर जाता है उसी का नाम बाप के साथ एड कर दिया जाता.
So the one who stands first, his very name is combined with that of the father.
शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है. क्या कहते?
It is said शिव शंकर भोलेनाथ. What is said?
शिव शंकर भोले भाले.
शिव शंकर भोले भाले.
भोले के साथ कौन? भाले.
Who is along with भोले meaning the innocent one? भाले.
मैं टाइटल में भी भोले पहले भाले बाद.
Even in the title, Bhole is first and Bhale is next.
Shiva pehle, Bhala baad.
Shiv is first and Bhala is next.
Shiva Bhola Bhala. So Shiva ka title hua Bhola. Bahut Bhola.
Shiv Bhola Bhala. So Shiv's title is Bhola. He is very innocent.
Aur Shankar ka title hua Bhala.
And Shankar's title is Bhala. Bhala literally means a spear. In addition, which weapon is shown in his hand? A trident. There are three prongs in it. What does spear mean? For example, there is a thorn. However, that is small. And how is the thorn in a spear? It is thick and big.
Baba kehte hai main bade se bade kaami kaante mein aata hu. Mujhe mote kaami kaante mein nahi aata hu.
Baba says, I come in the biggest lustful thorn. I don't come in any small lustful thorn.
Kisme aata hu? Bade se bade kaami kaante.
In whom do I come? In the biggest lustful thorn.
जितना जाति जो विशेष
होगा तेरे जन्म में वो उतना ही ज्यादा तीखी भाषा बोलने वाला होगा. The more someone is vicious in a 63 birth, the harsher he will speak.
इसलिए भक्ति मार्ग में राम के बाण बहुत प्रसिद्ध
हैं. This is why the arrows of Ram are very famous in the path of bhakti.
किसके बाण? राम के बाण.
Whose arrows? The arrows of Ram.
वैसे लोग जब दवाइयाँ देते हैं तो जब अच्छी दवाई देंगे अच्छी असर करने वाली तो कहेंगे ये राम बाण दवा है.
When the doctors give medicines, when they give a good and effective medicine, they will say, this medicine will work like Ram's arrow, Ram Baan.
ये अचूक काम करेगी.
It will work efficiently.
तो शक्ति परिवर्तन के कार्य में आसुरों को घायल करके उनको परिवर्तन करने का कार्य राम के बाण ही करते.
So in the task of world transformation, the very arrows of Ram do the work of hurting the demons and reforming them.
कृष्ण की मुट्ठी मीठी मुरलिया से मीठी मीठी चांद से वो असुर चेंज होने वाले नहीं.
Those demons aren't going to change through the sweet murlis, the sweet tunes of Krishna.
उनका नाम शिव है.
It was said that one's name is Shiv.
उनका
that one's whose
उनका
that one's
इनका नहीं
not this one's
माने इनके द्वारा जो पाठ बजाता हूँ इससे सृष्टि का कल्याण नहीं होने वाला.
It means the world isn't going to be benefited through the parts which I play through this one.
उनका नाम उनके द्वारा जो मैं पार्ट बजाता हूँ उससे सारी सृष्टि का कल्याण होने वाला.
That one's name. The entire world is going to be benefited through the part which I play through that one.
शिव माना कल्याणकारी.
शिव means beneficial.
वो कब देह में नहीं आता.
He never comes in the consciousness of the body.
जो शिव है वो देह में प्रवेश तो करता है लेकिन देह में ध्यान में नहीं आता.
Shiv certainly enters a body, but he doesn't come in the consciousness of the body. It means he doesn't become body conscious.
उसके नीचे फिर आओ सूक्ष्म पतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर.
अच्छा, कम बिलो इट टू द सटल वर्ल्ड वेयर देयर आर ब्रह्मा विष्णु एंड शंकर.
ब्रह्मा का तो नाम रूप देखने में नहीं आता.
ब्रह्मास नेम एंड फॉर्म आर इनविजिबल.
क्या बात है?
व्हाट इज दिस?
सूक्ष्म बतन में जो ब्रह्मा की शंकर है उनका नाम रूप इसका देखने में आता है संसार भक्ति मार्ग.
ब्रह्मा विष्णु एंड शंकर हु आर इन द सटल वर्ल्ड देयर नेम एंड फॉर्म हुज नेम एंड फॉर्म आर विजिबल इन द वर्ल्ड इन द पार्ट ऑफ भक्ति.
भक्ति मार्ग में ब्रह्मा के मंदिर नहीं भक्ति, ब्रह्मा की मूर्तियाँ नहीं भक्ति.
In the path of bhakti, Brahma's temples aren't built, Brahma's idols aren't prepared.
Chitra bhakti.
His pictures are made.
Lekin wo to nirakar hai. Wo kam sakar nahi bhakti.
However, he is certainly incorporeal. He never becomes corporeal.
Pura bhi nirakar ki hi hoti hai.
The incorporeal one himself is worshipped.
Purity.
What? What is the basis of worship? Student, purity. Purity is the basis of worship.
जो आत्मा जितनी ही जाति निराकारी स्टेज में स्थिर होती संगम वो उतनी ही ज्यादा पवित्र मानी जाए.
The more a soul remains stable in the incorporeal stage, in the confluence stage, the purer it will be considered to be.
और जितना बेमान रह जाएगा, उतनी ही पवित्र मानी जाए.
And the more it has body consciousness, the more impure it will be considered to be.
तो निराकारी को या पवित्र
को? So, whether you call him incorporeal or pure. In addition, the incorporeal one himself is worshipped. So, the children have the entire knowledge in their intellect.
Bhakti to ki
hai. You have certainly done bhakti.
Chitra bachcho ne dekhe.
The children have seen the pictures.
Tum jaante ho satyuk treta mein na chitro ki bhakti hoti aur na vichitra ki hoti.
You know that neither the pictures nor the formless one, Vichitra, is revered in the golden and the silver age.
Nirakar ki koi puja karta hai, aur na koi chitron ko bana kar unki puja karta hai. Kahan?
No one worships the point form, that is the incorporeal one, nor do they make his pictures and worship him. Where? In the golden and the silver age.
तुम भक्ति मार्ग के चित्रों को अच्छी नहीं जानते.
You know the pictures of the path of bhakti very well.
इन चित्रों के बड़े बड़े नाम रखे जाते हैं.
The pictures which are given very big names.
इसमें आता है परमपिता परमात्मा विचित्र है.
It comes to the intellect that the supreme father, supreme soul is formless.
उनका कोई चित्र ऐसा नहीं है.
देयर इज नो सच फॉर्म ऑफ हिम विच कैन बी कॉल्ड द प्यूरिफायर ऑफ द सिंफुल वंस.
क्यों? क्योंकि निराकार ही पतित पावन.
व्हाई? इट इज बिकॉज द इनकॉर्पोरियल वन हिमसेल्फ इज द प्यूरिफायर ऑफ द सिंफुल वंस.
जो निराकारी स्टेज को धारण करता है तो संसार में पाप प्रत्यक्ष होता
है. When he assimilates the incorporeal stage, the father is revealed in the world.
अगर वो मुकर्रर रति के द्वारा निराकारी स्टेज को धारण न करे तो दुनिया में उसको कोई पहचान भी नहीं सकता.
इफ ही डजंट असिमिलेट द इनकॉर्पोरियल स्टेज थ्रू द परमानेंट चैरियट, नो वन कैन रिकॉग्नाइज हिम इन द वर्ल्ड एट ऑल.
उनकी महिमा गाई जाती है, दुख हरता, सुख करता, पतित पावन.
He is praised, the remover of sorrow, the giver of happiness, the purifier of the sinful.
संसार में सुख बनाने वाला, सुखी शक्ति का, दुख का हरण करने वाला और पतितों को पावन बनाने वाला.
The one who brings happiness, the word of happiness, the one who removes sorrow and who purifies the impure ones.
तुम और कोई भी चित्र को पति का पावन नहीं कहेंगे.
यू वोंट कॉल एनी अदर फॉर्म एज अ प्यूरिफायर ऑफ द इम्प्योर वंस.
कोई भी मनुष्य नहीं जिनकी बुद्धि में ये बात हो.
देर इज नो ह्यूमन बींग हु हैज दिस कॉन्सेप्ट इन हिज इंटेलेक्ट.
ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म पतन वासी.
ब्रह्मा विष्णु एंड शंकर आर द रेजिडेंट्स ऑफ द सटल वर्ल्ड.
तो पहला तबका सूक्ष्म बतनवासी या दूसरे तबका पर सूक्ष्म बतनवासी पूछते होते कौन है.
सो द वन हु स्टेज इन द फर्स्ट अबोर्ड ऑफ द सेटल वर्ल्ड और द सेकंड अबोर्ड ऑफ द सेटल वर्ल्ड हु इज द हाईएस्ट.
तीन तबके है ना.
देयर आर थ्री अबोर्ड.
पहला तबका ऊंचते हो, दूसरा तबका बीच में और तीसरा तबका नीचे.
The first abode is the highest, the second abode is in the middle, and the third abode is the lowest.
So, who is the highest of the high?
Then, who is the highest of the high? The one who resides in the supreme abode is the highest of the high.
लेकिन वहाँ मूर्ति नहीं होती.
But there is no personality there.
वहाँ मूर्ति दिखाई नहीं जाती.
नो पर्सनैलिटी इज शोन ओवर देयर.
परम पिता परमात्मा सेकंड नंबर तबके में सूक्ष्म पतन है, यानी परम पिता परमात्मा है ऊंचे से ऊंचा.
द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल द सटल वर्ल्ड इज द अबोर्ड इन द सेकंड प्लेस. इट मीन्स द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल इज द हाईएस्ट ऑफ द हाई.
वो निराकारी स्टेज वाली बात.
It is about the incorporeal stage.
जो निराकारी स्टेज वाला है कोई पति.
The one who has the incorporeal stage himself is the purifier of the sinful souls.
और जब तक सूक्ष्म बतन की स्टेज में माना मन चिंतन मंथन की स्टेज में वो सेकेंडरी स्टेज ही.
And as long as he is in the stage of the subtle world, that is the stage of thinking and churning, it is the secondary stage.
वो secondary stage भी पतितों को पावन बनाने वाली नहीं.
Even that secondary stage doesn't purify the sinful ones. There is the corporeal bodily being in the third abode.
इन बातों में मुझे ना नहीं.
You shouldn't be confused in these concepts.
ये बातें सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई समझा नहीं सकता.
No one else except the Supreme Father, Supreme Soul can explain these concepts.
परमात्मा एक ही निराकार है.
The Supreme Soul is the only incorporeal one.
क्या?
What?
एक ही निराकार का अर्थ ये लगा ले कि वो बिंदु है.
If we derive the meaning of the only incorporeal one as a point, what are the insects and spiders too?
बिंदु है. पशु पक्षी क्या है? वो भी बिंदु है.
They are points. What are the animals and birds? They too are points.
500-700 crore मनुष्य अपने सारे बिंदु सारे निराकार हो गए.
All the 5 to 7 billion human souls are points. This way, everyone is incorporeal.
तो एक निराकार हुआ या सारे निराकार हुए.
So, is one soul incorporeal और आर ऑल द सोल्स इन कॉर्पोरियल?
है तो सारी ही आत्मा निराकार
है. इन फैक्ट ऑल द सोल्स आर इन कॉर्पोरियल.
लेकिन निराकारी स्टेज में टिकने की बात है.
बट इट इज अबाउट स्टेबलाइजिंग इन द इनकॉर्पोरियल स्टेज.
जो निराकारी स्टेज में टिकता है, ऑलराउंडर पार्ट पे जाता है, वो एक ही.
There is only one who stabilizes in the incorporeal stage, who plays an all-round part.
Paramatma ek hi nirakar hai.
The Supreme Soul is the only incorporeal one.
Kya kaha?
What was said?
Ye nahi kaha Parampita ek hi nirakar hai.
He didn't say the Supreme Father is the only incorporeal one.
Paramatma. माने परम पार्ट बजाने वाली आत्मा, वो एक ही निराकार है.
द सुप्रीम सोल दैट इज द सोल हु प्लेज द सुप्रीम पार्ट इज द ओनली इनकॉर्पोरियल वन.
ये सब बातें अच्छी की बुद्धि में धारण करनी है.
यू शुड एसिमिलेट ऑल दीज कॉन्सेप्ट इन द इंटेलेक्ट नाइसली.
ऊंचे से ऊंचे है निराकार, अब बीच में निराकारी बता.
द इनकॉर्पोरियल वन इज द हाइएस्ट ऑफ द हाई. And the subtle world is in the middle.
वहाँ कोई सृष्टि नहीं होती है.
There is no creation there.
वो ऊपर में सृष्टि है आत्माओं की.
The world of souls is above.
उसको कहा जाता है निराकार हिंदी.
It is called the incorporeal world.
हम आत्माओं की दुनिया incorporeal world. फिर हम आत्माएं corporeal world में आती है.
The world of earth souls is the incorporeal world. Then we souls come in the corporeal world. There are the souls there, and here there are the living souls. What kind of souls? The living souls. And there?
Atma to hai, lekin jadavat hai. जैसे कोई मरा हुआ पड़ा
हो. द सोल्स आर सर्टनली प्रेजेंट देयर बट दे आर इनर्ट लाइक समवन लाइंग डेड.
चैतन्य कहा जाता है बोलते और चालते.
द वन हु स्पीक्स एंड मूव्स अराउंड इज कॉल्ड लिविंग.
उसके मुख से आवाज निकले और जो चलता फिरता हो, आंखों की पुतली चलती फिरती हो, तो उसको क्या कहेंगे?
The person from whose mouth voice comes out, who moves around, whose eyeballs move, what will he be called? The living soul. So, it was said, there is no world there. There is the world of the souls. It won't be called the corporeal world. It is about here. You should have this in your intellect. We are certainly the children of the incorporeal Baba. The souls. We. Whose children are we?
Nirakar Baba.
Of the incorporeal Baba.
निराकार बाप के बच्चे ऐसे क्यों नहीं कहा?
Why didn't he say that we are the children of the incorporeal father?
साकार और निराकार दोनों का मेल जिसमें होता है, हम उसके बच्चे हैं.
We are the children of the one who is the combination of the corporeal and the incorporeal one.
अच्छा, 500-700 करोड़ उसके बच्चे नहीं है?
अच्छा, Aren't the 5 to 7 billion souls his children?
Kyo?
Student, no. Why?
Kyo nahi?
Why aren't they that?
Kyunki wo bacche baap ke sanam ko kabhi hote hi nahi.
It is because those children are never face to face with the father.
Jo sanam ko hote hain, wo baap ke bacche hain.
Those who are face to face are the father's children.
सन्मुख ही नहीं होते और ही विमुख हो जाते हैं द्वापर युग से, जो द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो साकार बाबा के बच्चे कहाँ होंगे?
Those who aren't face to face, those who turn their face opposite to the father all the more since the copper age, those who convert to other religions since the copper age, how are they the children of the corporeal Baba?
ऐसे ना कि बाप का बच्चा नहीं है, अरे अपने बाप का बच्चा नहीं, किसी दूसरे का खून पड़ी
है. They say this one isn't the father's child, don't they? It means he isn't the child of his own father. Someone else's blood has mixed in him.
अगर खून ही किसी दूसरे का पड़ गया है तो सगा बच्चा हुआ या सौतेला हुआ? सौतेला हुआ.
If he has the very blood of someone else, is he a true child or a stepchild? He is a stepchild.
निराकार बाबा के बच्चे.
So we are the children of the incorporeal Baba.
हम भी पहले निराकार थे.
We were also incorporeal earlier.
और निराकार बाप के पास रहते थे.
And we used to stay near the incorporeal Baba.
निराकार के पास रहते थे.
We used to stay near the incorporeal one.
ये कब की
बात? वही से चला.
निराकारी दुनिया में ही आत्मा रहती.
The souls reside in the incorporeal world itself.
जो निराकारी दुनिया में आत्मा रहती है वो अभी तक कार्ड बनाने के लिए आती है.
The souls who reside in the incorporeal world continue to come to play their part till now.
निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में अभी भी आत्माएं
The souls are still coming in the corporeal world from the incorporeal world.
साकार में आती
है. They come in the corporeal form.
तो वो हो गया निराकारी बाप का वतन.
So that is the abode of the incorporeal father.
हम आत्मा.
We are souls.
तो ये नशा होना चाहिए, अविनाशी चीज का नशा होना चाहिए ना.
So you should have this elation. You should have the elation of the imperishable thing, shouldn't you?
Namasa.
Elation of what?
जो चीज अविनाशी है उसका नशा होना चाहिए.
You should have the elation of the thing which is imperishable.
हम इस शक्ति रूपी रघुमंच पर 84 जन्म लेने वाली अविनाशी आत्मा.
We are the imperishable souls who have 84 births on this stage-like world.
हम एक जन्म भी कम नहीं लेते.
We don't have even a single birth less.
इसलिए हमारा अविनाशी पार्ट.
This is why ours is the imperishable part.
तो इस बात का नशा होना चाहिए.
So you should have the elation of this.
अविनाशी चीज का थोड़ी नशा होना चाहिए.
You shouldn't have the elation of the perishable things.
माना और भी जो आत्माएं हैं जो कम कलाओं वाली परमधाम से उतरती है, 16 कला संपूर्ण नहीं बचती है, वो विनाशी हुई या अविनाशी हुई?
It means the other souls, the souls with fewer celestial degrees who descend from the supreme abode, who don't become complete with 16 celestial degrees, are they perishable or imperishable?
वो विनाशी पार्टधारी और हम अविनाशी पार्टधारी.
They are the perishable actors and we are the imperishable actors.
तो विनाशी चीज का नशा नहीं होना चाहिए.
So you shouldn't have the elation of perishable things.
देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है.
Those with bodily elation are called the body conscious ones.
जो 16 कला संपूर्ण नहीं बनते हैं उनको कुछ न कुछ देह अभिमान रह जाता है.
It means those who don't become complete with 16 celestial degrees have body consciousness to some or the other extent.
और जो पूरे 16 कला संपूर्ण बनते हैं, पूरे 84 जन्म लेने वाले बनते हैं, क्या है?
And those who become complete with 16 celestial degrees, who have complete 84 births, what are they?
अविनाशी आत्मा, अविनाशी बाप के अविनाशी बच्चे.
They are the imperishable souls, the imperishable children of the imperishable father.
इसलिए उनके बारे में गाया जाता है 9 लाख सितारे.
This is why it is praised for them, 9 lakh stars.
वो तो आसमान के सितारे और हम हैं धरती के चेतन सितारे.
In fact, those are the stars of the sky, and we are the living stars of the earth. They are also praised in the form of the Naulakha Har, meaning necklace with 9 lakh gems.
Naulakha Har की विशेष आत्माएं हैं जो पाप के गले का हार बनती.
There are such 9 lakh special souls who become the father's necklace.
वो है बड़े से बड़ी माला.
That is the biggest garland. The souls are imperishable, the body is perishable. The soul says, I take 84 bodies. We souls are the residents of the supreme abode. We were along with the father. We have come here from there to play our part.
Atma कहती है वो Baba, साकारी शक्ति में साकारी Baba.
The soul says, Oh Baba, the corporeal Baba in the corporeal world.
क्या? साकारी शक्ति में साकारी Baba और निराकारी शक्ति में निराकारी Baba.
The corporeal Baba in the corporeal world. And the incorporeal Baba in the incorporeal world.
क्या बात हुई?
What is this?
उल्ली में तो बोला साकार और निराकार के मेरे को बाबा कहा जाता
है. It has certainly been said in the Murli, the combination of the corporeal one and the incorporeal one is called Baba.
तो निराकारी सृष्टि में बाबा कहाँ से आ गया?
Then. Where did Baba come from in the incorporeal world?
Baba to grandfather ko kaha jata hai.
In fact, a grandfather is called Baba. Student, it is about the incorporeal stage.
Nirakari sthiti ka matlab hai srishti mana karm karne wali. Param dham mein srishti nahi hoti. Ye to
Yes, the meaning of the incorporeal world, Nirakari Srishti is, Srishti means that which gives shelter. There is no Srishti in the Supreme Abode. In fact, this is, your children will bring down the Supreme Abode in this world. It means such a gathering of the Brahmins will be ready at Mount Abu, where all the 9 lakh souls will be stabilized in the incorporeal stage. Our incorporeal Baba will be present there. Our Baba in that stage will be incorporeal. There won't be the need for him to come in the corporeal stage.
ये तो बिल्कुल सहज बातें
हैं. These are very simple concepts. We souls reside in our incorporeal world.
वहाँ निवास करती हैं.
We live there.
फिर हमको कहाँ पार्ट बजाना है?
Then where do we have to play our part?
निराकारी दुनिया से नंबर बार कहाँ आवेंगे?
Where will we come number wise from the incorporeal void? We will come in the corporeal world. From where will the corporeal world begin? Student replies, yes, on the earth, but from where will it begin? Student, in Bharat. Where in Bharat? Student, Delhi, on the banks of Yamuna. Such a place will be ready on the banks of Yamuna at Delhi, where we souls will continue to come number wise. We have to play our part. There isn't any part in the subtle world.
Yeah.
What?
Seva ka part bhi sukshma batan mein nahi hota.
In the subtle world, there isn't the part of service either.
Brahma ki atma jo abhi part dhari hai, part bajai rahi hai sthapana ka, wo bhi kahan bajati hai?
The soul of Brahma, who is an actor now, who is playing the part of establishment, where does he play that part?
Sakar shakti mein bajati hai.
He plays it in the corporeal world. There isn't any part in the incorporeal world, and there isn't any part of service in the subtle world either. They have shown the physical body for Brahma, Vishnu as well as Shankar, who are the residents of the subtle world. What is the reason behind this? In the path of bhakti, they say Brahma, Vishnu and Shankar are the residents of the subtle world. They call them the residents of the subtle world. Still they have shown their pictures. They also show their physical pictures. What is proved by this? It is proved that they also come in body consciousness in the corporeal world. When it is necessary, they come in body consciousness. And when it isn't necessary, they don't come in body consciousness. And what about the human beings? The human beings definitely become body conscious. All the human beings are body conscious and the deities are soul conscious. And the deities, who are the residents of the subtle world, belong to the confluence age. The very meaning of confluence is combination. What? The combination of both, body consciousness and soul consciousness. The place where there is a combination of both of them is called the subtle world. Human beings don't have any knowledge. Well, Brahma is called Prajapita Brahma. Then Prajapita Brahma is certainly present here, isn't he? It means, will Prajapita Brahma be with the subjects or will he be the resident of the subtle world? He should be with the subjects. There aren't any subjects in the subtle world.
तो यहाँ प्रजा भी है और प्रजापिता ब्रह्मा भी।
सो द सब्जेक्ट्स एज वेल एज प्रजापिता ब्रह्मा आर प्रेजेंट हियर।
मुरली में बोला उन ब्राह्मणों से पूछो तुम अपने को ब्रह्मा मुख वंशावली कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है।
It is said in a Murli, ask those Brahmins, when you call yourself Brahma Mukhvanshavali, where is your Brahma? They will say, he is the resident of the subtle world.
अरे तुम यहाँ पैदा हो रहे हो और तुम्हारा बाप सूक्ष्म बद्रवासी।
अरे you are being born here and your father is the resident of the subtle world.
ये कैसे हो सकता है?
How is this possible?
माना तुमको पता नहीं है, तुमको पक्का पता है कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो और तुम्हारा प्रजापिता ब्रह्मा भी इस सृष्टि पर साकार में हो।
It means they don't know it. You know this firmly that you are the children of Prajapita Brahma and your Prajapita Brahma is also present in a corporeal form in this world. Om Shanti.